ओम शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। तो कितनी देर लगनी चाहिए उड़ने में? तो एक सेकंड में हम कैसे फुल स्टॉप लगाए, ये अभ्यास हम कैसे बढ़ाए, इस पर प्रकाश डालेंगे भ्राता राजू जी। और आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं, आपका भी समर्पित जीवन का बहुत लंबा स्वर्णिम इतिहास है। अगले ही वर्ष आपके समर्पित जीवन का गोल्डन जुबली वर्ष रहेगा। अगला वर्ष 1976 में भ्राता जी को बहुत से ब्राह्मण भाई बहने, कौन से वाले भाई के नाम से जानते हैं? मुरली वाले राजू भाई। तो ये मुरली का डिपार्टमेंट बाबा ने आपको 1976 में दिया, कि सभी जानते हैं पहले मुरलियां सिंधी लिपि में लिखी जाती थी, तो सिंधी लिपि को हिंदी लिपि में टाइप करना और सभी सेंटरों पर पोस्ट करना, ये जिम्मेवारी आपको मिली, जो बखूबी आप उसको आज दिन तक निभा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिला कि सदा ही ज्ञान रत्नों से खेलने का सुंदर अवसर मिलता है, और इसलिए साथ साथ बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया हुआ है। तो ज्ञान और योग के रत्नों से भरे हमारे भ्राता जी सबके साथ ज्ञान और योग की शेयरिंग करके सबको लाभान्वित करते हैं, इसके लिए पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं, और साथ साथ कोरोना काल में तो खूब सारी क्लासेस कराई। और मैं समझती हूँ कोरोना काल अभी लगभग लगभग पूरा हो रहा है और आपकी यात्राएं आरंभ हो चुकी है, सेवा अर्थ भटिया करने जाना, आप साल भर बिजी रहते हैं। तो अभी हम सुनते हैं भ्राता जी से सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास।
ओम शांति। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छे उमंग उत्साह के उड़ने के पंख दिए हैं, दिव्य बुद्धि के विमान से हम इस साकार वतन से अपने अव्यक्त वतन और मूल वतन में पहुंचे। उसके लिए संकल्पों की हलचल को स्टॉप करना होगा, क्योंकि जब तक इस देह और देह की दुनिया की बातों का चिंतन है, तब तक इस साकार लोक को हम छोड़ नहीं पाएंगे। बुद्धि से इसको भुलाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है कि चलते हुए संकल्पों को ब्रेक दें, फुल स्टॉप लगाएं। मैं समझता हूं आप सब करते होंगे, बहुत सारी बातें, अनेक जवाबदारियां, अनेक परिस्थितियां, अनेक कारोबार में आते, उन आत्माओं के पास आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर रहती है जो अपने संकल्पों को ब्रेक देना जानते हैं। अब मन एक चैतन्य शक्ति है आत्मा की, और उसको तो कितने नाम दिए गए हैं कि तूफानी घोड़े की तरह भागता है, हवा की तरह एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। पूरी गीता में अर्जुन बार बार भगवान से यही कहते हैं, ये तो बहुत मेहनत का काम है, ये नहीं होगा। इतना चंचल मन उसको एक सेकंड में रोक ले, कैसे रुकेगा। तो दो बातें गीता के अंदर आती हैं, एक अभ्यास नहीं छोड़ना, कभी एक सेकंड रुकेगा, कभी दो सेकंड रुकेगा, रुकते रुकते अभ्यास करते करते इस पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। और दूसरा कहा है वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं है, हद का वैराग्य तो बहुतों को आता है थोड़े समय के लिए, जिसको बाबा कहते हैं शमशानी वैराग्य, कुछ देखा जिसके लिए सोचा नहीं था और ऐसी घटनाएं सामने आई तो वैराग्य आता है, छोड़ो क्या है, ऐसे सब हो जाएगा, ऐसे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वैराग्य वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाते हैं। बच्चे असार संसार है, इस कलयुगी संसार में कोई सार नहीं है, इसको देखते हुए भी नहीं देखो। जैसे गीता में कहा भगवान ने कि सब मरे पड़े हैं, तुम किसको मारेगा, ये तो सब पहले से ही मरे पड़े हैं, क्यों अपना समझ रहा है। ऐसे ही जब इस दुनिया में कोई भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं रहता, तब वैराग्य वृत्ति मन को शांत कर देती है, भटकना बंद हो जाता है। लेकिन अभ्यास की जरूरत है। योग में भी अभी तक बहुत सारे रस हैं, गीत सुनने का रस है, कमेंट्री का रस है, कई बातें सुनते सुनते कहते हमारा योग अच्छा लग गया, उनका चिंतन चलता रहता है, उनकी स्मृति बनी रहती है। लेकिन एक सेकंड में ब्रेक लग जाए संकल्पों को, एक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हो। जिन आत्माओं ने ऐसी तपस्या की, हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसा प्रयास, ऐसा अभ्यास किया, जो एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते थे। बैठे हैं एक जगह पर, शरीर एक जगह पर है, लेकिन मन की शक्ति से कहीं पर भी पहुंच करके अपने शिष्यों को जो पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको अनुभव कराते मैं तुम्हारे साथ हूं। वो एकाग्रता की शक्ति थी। समय प्रमाण हमारे पास ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो जो हमारी दृष्टि से, नजर से लोग निहाल हो जाएं। एक आंतरिक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, और दूसरा एक आभा मंडल बनता है एकाग्रता से। जितना संकल्प एकाग्र हो जाते हैं उतना शुद्ध पवित्र ओरा बनता है, जिसको हम कहते हैं लाइट का शरीर। ये अभ्यास अगर हमने कर लिया है तो आत्मिक स्थिति का ही अभ्यास, अपने स्वस्वरूप में स्थित होना, मैं एक लाइट हूं, एक शक्ति हूं, एक चैतन्य ऊर्जा हूं, एक एनर्जी है। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, संकल्पों की हलचल ब्रेक हो जाती, रुक जाती है, उसे एक आभा मंडल भी तैयार होता है और अंदर की शक्ति का भी निर्माण होता है। जिस शक्ति के आधार से जो संकल्प चलते हैं, बोल निकलते हैं, वो सिद्ध होने लगते हैं। कहते हैं इसके पास संकल्प में बड़ी शक्ति है, जो सोचता हो जाता है, जो बोलता है वो हो जाता है। उसने उस आध्यात्मिक शक्ति को अपने पास जमा किया है। और दूसरा ऐसा आभा मंडल प्रकाश का बन जाता है जो अंधकार दूर हो जाता है। कोई भी आत्मा को हमारे वाइब्रेशन से भी सही मार्ग मिल जाए, रास्ता मिल जाए, हल मिल जाए। दुनिया की आत्माएं कितनी हलचल में हैं, क्या, क्यों, कैसे, अब क्या होगा, कल क्या होगा, कितनी उलझन में फंसी हुई हैं। मैं समझता हूं बाबा के बच्चों के मन में इस प्रकार की उलझन तो नहीं होगी। बाबा ने अपने बच्चों को इतना सशक्त बना दिया है, समर्थ बना दिया है, जो कभी प्रश्नों में उलझते नहीं है। जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। और जब कल्याणकारी ड्रामा चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, तो प्रश्नों में उलझने की आवश्यकता कहाँ है? क्यों उलझ रहे हैं? संकल्प को एक सेकेंड में स्टॉप करने का अभ्यास, लेकिन स्टॉप करके खड़ा नहीं करते हैं। कोई गाड़ी में ब्रेक लगा के खड़ा कर दे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए दो शब्द आते हैं, स्टॉप और स्टार्ट। पहले स्टॉप करो और फिर जिस जिधर पहुंचना है उधर के लिए स्टार्ट हो जाओ, वो संकल्प जरूर चलाओ। इसलिए व्यर्थ नेगेटिव जो मेरे काम के नहीं, जो मेरी उन्नति के संकल्प ने, उनको स्टॉप करना है। कुछ समय दादी जानकी जी की स्थिति मैंने देखी। दादी का एक शब्द बहुत फेवरेट हो गया था, कहती थी डोंट थिंक, डोंट थिंक। जब मैं कोई बात सामने लेके जाता, कोई पत्रों का जवाब लेने जाता, कोई बात सुनाता, कहते डोंट थिंक, मैं हंसता, हमने कहा दादी ये तो संभव नहीं है, डोंट थिंक कैसे होगा, सोचेंगे नहीं कोई बात, सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, उत्तर कैसे देंगे। तो बड़ा प्यार से कहती थी, जो मेरे काम का नहीं है वो डोंट थिंक, जो जरूरी नहीं है वो नहीं सोचना है, जो जरूरी है वो तो सोचेंगे ही। अच्छे अच्छे विचार अगर नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे होगी, तो करना ही है। लेकिन जो उलझन वाले विचार हैं, जो वर्तमान समय आप हम सब देख रहे हैं, संसार देखते रहे, संसार की हालत क्या हो गई, भगवान देख रहे हो ना सब, कैसा संसार, दुखमय संसार बन गया, कोई को कल का भरोसा नहीं है क्या होगा, कल क्या, कुछ पल की भी किसी को जानकारी नहीं है क्या होगा। सुना होगा दो दिन से समाचार चल रहे हैं, अचानक हिमस्खलन, ग्लेशियर्स ऊपर से नीचे आए पानी को लेके, और कितने लोगों को बहा के चले गए, गांव के गांव खत्म कर दिया। उत्तराखंड में सुना है ना, समाचार तो आता होगा थोड़ा बहुत, कितने दबे हुए हैं, कितने घर बह गए, कितने बिजली प्लांट जो लगा रहे थे, पावर प्लांट, नाम निशान खत्म हो गया। आधा घंटे पहले कुछ नहीं और आधा घंटे के अंदर सब, कितने हेक्टर्स जंगल बिल्कुल मलबा बना हुआ पड़ा है, मिट्टी का मलबा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है वहां, जंगल था, जहां पर गांव बसे हुए थे, जहां पर कुछ भी था, सब खत्म, पुल खत्म हो गए, रास्ते टूट गए, कुछ नहीं रहा, आधा घंटे के अंदर का खेल है। अब ये संसार की हालत, अचानक सृष्टि परिवर्तन के समय, बाबा कहता है तो बहुत दर्दनाक सीन आने वाली है। ऐसे समय पर आप बच्चों को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, सोचते रहो, रिसर्च करते रहो। बाबा के बच्चे तो जानते हैं ये कलयुग सृष्टि के परिवर्तन का समय है। सृष्टि चक्र अपना 84 जन्मों का पूरा चक्र पूरा करके अंतिम समय पर आया है। अब ये कलयुग सतयुग में परिवर्तन होगा, इसलिए कभी भी कोई हलचल के प्रश्न नहीं उठते, क्यों, क्या, कैसे में। चलो ये तो प्राकृतिक आपदा आई और जहां आई वहां वालों के लिए कहेंगे हमारे को क्या है, लेकिन हमारे ही भाई बहने हैं, शुभ चिंतन तो है ना, शुभ भावनाएं भी हैं। सिर्फ हम समाचार सुने, क्यों क्या में उलझे। बाबा कहता बच्चे आप बच्चों का कुछ कर्तव्य है, कुछ फर्ज है। ऐसे समय पर लोग भगवान को बहुत पुकारते हैं। आप बच्चे अपने संकल्पों को सब बाह्य जगत से निकाल करके अपनी फरिश्ता ड्रेस से इन आत्माओं को शक्ति दो, सहन करने की तो शक्ति दो, सामना करने की शक्ति दो, इस दृश्य को पार कर सकें, सहन कर सकें। इसके लिए हम सबको बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। हम ही अगर संकल्पों में उलझे हुए हैं, तेरे मेरे में ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, उसने ये किया उसने वो किया, अभी तक भी ब्राह्मण आत्माओं को वैराग्य कम आया है, इसलिए बाह्य मुक्ता बहुत है। जब तक हम अंतर्मुक्ता की गुफा में नहीं जाएंगे तब तक एकाग्रता का अभ्यास नहीं होगा, और एकाग्रता का अभ्यास नहीं होगा तो ये सूक्ष्म सेवाओं से हम वंचित हो जाएंगे। बहुत सूक्ष्म सेवाएं हैं ये। बाबा मनसा सेवा कहता है, सकाश देने की सेवा कहता है, वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा कहता है। अगर हमारी ही वृत्तियां बहुत चंचल हैं, भटक रही हैं, स्थिर नहीं, एकाग्र नहीं, तो हम बाबा के साथी कैसे बन सकते हैं, इस बड़े कार्य में हम सहयोगी कैसे बन सकते हैं। ये विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य है, और इस कार्य में सहयोग के लिए हम बच्चों को अपने संकल्प शक्ति पर बहुत ध्यान देना, ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। अंतर मन वाहन, जिसको भक्ति में कहा है अंतःवाहक शरीर, शायद अभ्यास कोई कोई करते होंगे, सब तो नहीं करते हैं, लेकिन इस अभ्यास पर ध्यान देना। हमारी दादी जानकी कोई बहुत अच्छा अभ्यास था, लेकिन बहुत मेहनत किया उन्होंने इसके लिए। ये जो इंद्रप्रस्थ है ना, इंद्रप्रस्थ का कमरा यहाँ देखना, शांति स्तंभ के सामने दादी का रूम था। शाम को कहती थी मेरे को थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, मैं आज रेस्ट पर जाऊंगी, बाहर से कुंडा लगा दो। पूरी रात बैठ करके इस अंतःवाहक शरीर से सेवा करती थी, सोती नहीं थी जा करके, लेकिन कोई हलचल में कोई कारोबार में बाहर नहीं आई, अकेले में बैठ जाती थी, रेस्ट के बहाने अंदर बंद किया कमरा और रात भर तपस्या की, मनसा सेवा की, अंतःवाहक शरीर से सेवा की। उसके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों ने अनुभव किए और बाबा ने भी सुनाए हैं ये सब। बाबा ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा है ऊपर ऊपर का, लेकिन किसी बच्चे ने किया है तब कहा है कि ऐसे अभ्यास किए जा सकते हैं। एक बार एक यहां पर बहुत बड़े वीआईपी का आने का प्रोग्राम था, और कई प्रकार के विघ्न हैं सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा। अगर कोई भारत का नामी ग्रामी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर यज्ञ में बाबा के घर में आना चाहे और यहाँ की क्लीयरेंस न मिल रही हो, नहीं नहीं ऐसे समय में यहाँ नहीं आ सकते, ये है वो है, बहुत सारी बातें आई, दादी ने बंद कर लिया कमरा, रात भर मनसा सेवा की, रास्ता क्लियर हो गया। और उस व्यक्ति को जहाँ जो आना था, जब उसका प्रोग्राम बन गया तो यहाँ की सरकार ने उनका रहने का, ठहरने का सर्किट हाउस में फिक्स कर दिया, दिलवाड़ा दिखाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी के पास केवल 15-20 मिनट। लेकिन जब वो आया और हेलीपैड पर उतरा यहाँ पोलो ग्राउंड में, बहनों को देखा, एक तरफ सरकार के अधिकारी खड़े हैं गाड़ियां लेके, एक तरफ बहनें खड़ी हैं, और सीधा बहनों के पास आया, बोलता कहाँ चलना है, लिखित प्रोग्राम कुछ नहीं पूछा, देखा और बहनों को कहा चलो आप गाड़ी आगे लेके चलो, हम पीछे आते हैं। सीधा ही हेलीपैड से पांडव भवन में आ गया, और पांडव भवन में ही यही रिफ्रेश हुआ, फ्रेश हुआ, और फिर पूरा 3 घंटे का कार्यक्रम जो उसका प्रोग्राम था फुल किया, सबसे मिला जुला, सब बातें हुई, सबने कहा साहब इधर जाना है उधर जाना, कहता नहीं मैं जिसके लिए आया हूं वही करूंगा, और यहां से पूरा करके 3-4 घंटे का कार्यक्रम सीधा ही हेलीपैड पर गया और उड़ गया, कहीं नहीं गया। कुछ दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद बाबा का अवतरण हुआ। बाबा ने बोला बच्चे क्या हुआ था, इस बच्चे को कैसे सब टचिंग आ रही थी, कहीं नहीं जाना है, केवल एक कार्यक्रम में जाना है। फिर बाबा ने बताया कि बच्ची ने जानकी दादी के लिए कहा, इस बच्ची ने रात भर एक लाइट का ऐसा आभामंडल बनाया, ऐसा ओरा बनाया, जो वो आत्मा जहां से निकली उसी ओरे के अंदर आई और यहां आकर के सब कार्य किया और उसी लाइट के ओरे से अपने स्थान पर वापस चली गई, बाहर नहीं निकल सकती थी। ये शक्ति संकल्प के कंट्रोलिंग पावर से ही आई। और दादी के लिए तो कहते ही थे वर्ल्ड की ऐसी महिला है जो फुल स्टेबल माइंड है, जरा भी हलचल नहीं है, चेक किया था साइंटिस्ट ने, ये सर्टिफिकेट दिया था कि संकल्पों में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। ये अभ्यास करके उस फरिश्ते स्वरूप को तैयार किया और उस स्वरूप से सेवाएं की, विघ्न खत्म किए, कई प्रकार की प्रॉब्लम हल कर दी। कोई भी कार्य हो, दादी वर्णन नहीं करती थी, इधर उधर कहती नहीं थी, एकांत में चली जाती, तबीयत का बहाना लेकर के भी चले जाते थे। और उस अभ्यास से आज इतने कार्य निर्विघ्न किए। प्रकाशमणि दादी संगठन को ज्यादा महत्व देती रही, कोई भी बात आती थी कहती थी आज 15-20 लोगों को, यहां हम लोगों को कहती थी आज हम 2 बजे योग करेंगे, क्या है नहीं बताती थी कुछ भी, लेकिन 1:30-2 बजे, 1:30 बजे उठ जाओ, 2 बजे यहां के हाल में बैठ जाओ, इसी हाल के अलग अलग, एक सोफे ओफे तो थे नहीं हमारे पास कोई, अलग अलग गद्दी डाल दी और दादी भी सब बाहर सामने आके गद्दी पर ऐसे बैठ करके पूरा 3 घंटा अखंड भट्टी करी और उससे कई प्रकार के विघ्न खत्म किए, कई प्रकार की रुकावटें यज्ञ की समाप्त की। हलचल नहीं, क्यों क्या नहीं, वर्णन नहीं, ये संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास है। क्यों क्या कैसे में हम जाएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे करते वैसे करते, ये तो और बढ़ जाएगा, विस्तार हो जाएगा। मान लो आपके सामने कोई पेपर आ जाए शरीर का, आप 10 लोगों को सुनाने लगो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ये तकलीफ है, तो 10 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, वो अपनी अपनी दवाई दे देंगे, फिर उलझ जाएंगे क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। और अगर खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं, समझते हैं नहीं ये दवाई हमारे को सूट करती है, खाना सूट करता है, ये हम करेंगे ठीक हो जाएंगे। अब संकल्पों में एकाग्रता चाहिए, स्थिरता चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी बातें आती हैं, कोई के आगे शरीर का पेपर, कोई के आगे संबंधों का पेपर, कोई के आगे आर्थिक रूप में धन का पेपर, किसी न किसी प्रकार के बंधन, रुकावटें कई प्रकार के आते हैं, लेकिन संकल्प की एकाग्रता हर रास्ता साफ कर देती है। कुछ भी हो, मन को एकाग्र कर लो। दो शक्तियों को बढ़ाना है, एक धैर्यता, कोई भी बात है ना धैर्यता, बहुत धीरज, धीरज रख मनुआ, सब ठीक हो जाएगा, उतावले नहीं हो जाओ, जो आया बोल दिया, जो आया कह दिया, ऐसा करता ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, कितना एनर्जी नष्ट होती है, अपनी भी दूसरों की भी, फिर ब्रेक लगाओ लगेगी नहीं। लेकिन जो शांत चित्त धैर्यवत हैं, सुनते हैं, अच्छा ठीक है विचार करेंगे, दादियों के सामने हम कोई भी बात लेके गए, कोई भी बात आई, तुरंत निर्णय नहीं लिया, कहा ठीक है विचार, इतनी बड़ी शक्ति है धैर्यता की, थोड़ा समय विचारों को शांत किया और सब हल निकल आता है। लेकिन तुरंत जवाब दे दिया, तुरंत बोल दिया, पुलिस स्टाफ ही नहीं लगता है, सोचते रहते हैं, कईयों को तो सोचने की बीमारी हो गई है, इतना सोचते हैं जो रात भर नींद नहीं आती, बाबा के बच्चे बनने का क्या फायदा है, विचार करना, हम बाबा के बच्चे बन करके भी क्यों, क्या हमें उलझे रहे, ऐसा मेरे को बोल दिया, ऐसा हो गया, यहां ऐसा हो गया, समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्यों उलझे हुए हैं। संकल्पों को ब्रेक लगाओ, देखो लगती है या नहीं लगती है पावरफुल ब्रेक। कई बार ऊंचाई पर जाते हैं, ब्रेक चेक नहीं करते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाते हैं, कहते हमारी ब्रेक तो बहुत अच्छी है, पावरफुल है, लेकिन जब लगाते हैं जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगती और दूर जाके लगे तो क्या फायदा, एक्सीडेंट हो जाता है। अब ब्रेक तो पावरफुल तभी होती जब उसमें ऑयल पड़ता रहे बीच बीच में, सूखी ब्रेक तो फेल हो जाएगी ना। अगर ज्ञान और योग का अच्छा ऑयल है, अच्छा चिंतन है, कितना वंडरफुल बाबा ने ज्ञान दिया है, बच्चे इस नाटक के अंदर अटकना नहीं, हर आत्मा का अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा। हम अपेक्षाएं रखते हैं, जैसा मैं करता हूं ये मेरा ऐसा साथी भी करे, ये भी करे, ये भी करे, मेरे बच्चे भी मेरा कहना माने, मेरे परिवार वाले भी मेरा कहना माने, मैंने इनको जन्म दिया, बड़ा किया, पालना किया, फिर उसके ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। जबकि बाबा ने कहा एक का पार्ट दूसरे से मिलेगा ही नहीं, फिर हम अपेक्षाएं रखेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, हलचल आएगी, क्रोध आएगा, फिर संकल्प कहां से फुल स्टॉप होंगे। इसलिए इस नाटक को बहुत अलग से साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके देखने का अभ्यास करो। अच्छे पार्टधारी भी हैं तो विलियन वाले भी, उनको भी रोल मिला हुआ है, कोई महिमा करेंगे, कोई गाली देंगे, कोई सहयोगी बनेंगे, कोई विरोधी बनेंगे, सब प्रकार के एक्टर है ना। अब सब मेरे मुताबिक हो जाएगा क्या? अगर ये कोई सोचता है जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही होना चाहिए और नहीं होता है तो डिस्टर्ब होता है। ध्यान देना, बाबा ने हम सब बच्चों को अपने समान मास्टर नॉलेजफुल बनाया है, नॉलेज फुल स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है, फुल नॉलेज है लेकिन नॉलेज समझ हलचल में लाने के लिए नहीं है। देखो सुनो साक्षी दृष्टा स्टेज पर रह करके देखो, बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। सेकंड में फुल स्टॉप लग सकता है लेकिन अगर इन्वॉल्व हो गए साक्षी दृष्टा की बजाय आप उसके बीच में आ गए, हलचल में आ गए, तो कभी भी स्थिति एकाग्र नहीं हो सकती, संकल्प रुक नहीं सकते। कुछ उल्टा बोलेंगे भी, कुछ करेंगे भी, कुछ सोचेंगे भी। इसलिए बाबा ने हम सबको साक्षी दृष्टा की बहुत ऊंची स्टेज दी है, सीट दी है, सीट पर बैठो। ऐसे बाबा कहता सीट पर बैठने वाले का सब सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं। सीट से उतर गए फिर कहते रहो, कोई मानेगा नहीं कहना। पहले तो हमारी कर्मेंद्रियां ही हमारा कहना नहीं मानेंगी, दूसरे कैसे मानेंगे। इसलिए सीट को देखो, सीट आती बैठना इस पर आता है, साक्षी दृष्टा की सीट बहुत न्यारी और प्यारी सीट है। जैसे नाटक देखते हैं, कोई भी पार्टधारी पार्ट बजा रहा है, कोई ने राम का पार्ट बजाया, कोई ने सीता जी का पार्ट बजाया, कोई ने हनुमान जी का पार्ट बजाया, कोई ने रावण का भी पार्ट बजाया, मेघनाथ का पार्ट बजाया। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा और स्टेज पर बजाता है तो सब कहते वाह वाह। ऐसे नहीं कहते ऐसा इसने क्यों किया, इसने सीता जी का हरण क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हनुमान जी ने इतनी लंका को कैसे आग लगा दी। करते हैं क्वेश्चन क्यों क्या कैसे, कहते नहीं बहुत अच्छा इस पार्टधारी ने अपना पार्ट बजाया, इस एक्टर ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, और देख करके खुश भी होते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा पार्ट था, बहुत अच्छा खेल किया। जब खेल की रीति से देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, और अगर उसको प्रैक्टिकल समझ करके देखने लगे तो दुखी हो जाएंगे, ऐसा करता है, ऐसा करता है, क्यों करता है, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए। बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे इस बेहद नाटक को इसी रीति से देखो कि हर एक्टर कैसे कैसे अपना पार्ट बजा रहे हैं, बड़ा वंडरफुल पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन साक्षी होकर के देखेंगे तो मजा आएगा। अगर रियल समझ लेंगे तो मुंह जाएंगे, ऐसे करता है इतना ज्ञानी हो करके, इतना पुराना हो करके, इतने अच्छे अच्छे क्लास कराने वाला, ये भी ऐसे करता है। इसकी कथनी और कहनी एक नहीं, बस चल गए क्वेश्चंस उठने लगे, उलझ जाओगे। इसलिए बाबा कहता बच्चे देखो साक्षी होकर के, शुभ भावनाएं भले रखो उसके लिए मना नहीं है, लेकिन उलझना नहीं कहीं। हर आत्मा के कई जन्मों के हिसाब किताब चुक्त होने का समय है। फुल ज्ञान मिला है बाबा का, नॉलेज फुल बनो। जो हम सब ने देहभिमान में आकर के 63 जन्म से पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों का खाता कुछ तो उसी जन्म में चुक्त किया है, कुछ रहे हुए हैं, और अंत समय में सब आत्माओं का अपना अपना हिसाब चुक्त होगा। बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है, और उस ज्ञानी स्वरूप ज्ञानी तो आत्मा अगर सोचती है इस समय ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, और कंप्लेन है अंदर किसी भी प्रकार की, तो बाबा का ये शब्द याद रखना, जहां कंप्लेन है वहां कंप्लीट नहीं बन सकते। अगर कंप्लीट बनना है तो कोई भी प्रकार की ना अपने प्रति, न साथियों के प्रति, न परिवार के प्रति कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन। इस आत्मा का ये पार्ट है, देखो साक्षी होकर के। फर्ज भले पूरा करो लेकिन डिस्टर्ब हो करके नहीं। फर्ज है कुछ, कोई को गाइड करने का फर्ज है, अगर नहीं कर रहे हो तो बिगड़ रहा है। समझ रहे हो कि अगर हम इसको गाइड नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, उल्टा करेगा, बताओ जरूर, लेकिन अधिकार से नहीं, बहुत न्यारे होकर के। अभी समय अनुसार हम सब की स्थितियां एक रस होनी चाहिए, अचल अडोल एक रस। इसलिए नॉलेजफुल साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी स्टेज, त्रिकालदर्शी माना आदि मध्यंत सत्युक्त रहता वाला नहीं सोचो, अभी अभी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, त्रिकालदर्शी स्टेज में रह करके कुछ अनुभवों के आधार से, जो पास्ट अनुभव हुए हैं उनके आधार से अच्छे अच्छे संकल्प करो, और ऐसे अच्छे कर्म संकल्प बोल हों जो भविष्य अच्छा हो जाए। जो भविष्य है, वर्तमान अभी हम जी रहे हैं, एक घंटे के बाद हमारे सामने बाद भविष्य आता जाएगा और अभी का वर्तमान पास्ट हो जाएगा। ये जो त्रिकालदर्शी स्टेज है, इस त्रिकालदर्शी स्टेज में नॉलेजफुल कहीं से भी माया अगर आने वाली है, आ सकती है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कारण से, तो उसके नॉलेजफुल बनो, नहीं तो स्थिति डगमग कर देगी। मान लो आपको पता है हम माउंट आबू जा रहे हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, जरूर अधिक ठंडी होगी, तो जब जाने लगते हैं तो तैयारी करके आते हैं ना, भाई हमारे को इतना गर्म कपड़े ले जाना है, ये साधन चाहिए, नहीं तो वहां बीमार पड़ेंगे, कुछ भी होगा, इससे तो अच्छा है हम सब साधन लेकर के जाएं। पता है ना ये होने वाला है, हो सकता है ऐसे कोई अलबेले वो करके आ जाएं, कोई गर्म कपड़े न लाएं, कुछ ऐसा न लाएं, बेचारे आएंगे यहां लाभ ही नहीं ले सकेंगे। नॉलेजफुल है इस चीजों के, तो बहुत नॉलेजफुल है, लेकिन चारों तरफ जब माया का साम्राज्य है, सब जानते हो। दादी जी का एक शब्द सुनाता हूं, बहुत प्यार से कहती थी, मैं तो अपने को सदा पेपर हाल में समझती हूं, सदा मेरा पेपर होता है, मैं बाहर से निकलूंगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई, मैं अपने आप को समझती हूं मैं पेपर हाल में ही हूं, पेपर तो आएंगे और मुझे पास होकर के नंबर आगे लेना है। क्यों आ गया, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, मैं तो हेड हूं, मैं संस्था की बड़ी हूं, सम्मान से बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपेक्षाएं रखोगे तो दुखी होते रहोगे। दादी ने हमेशा अपने आप को इतना नम्रचित बना करके, भले ही हमारे सब मास्टर हैं, सब पेपर लेने के लिए तैयार रहते हैं, स्थिति डगमग नहीं की, बातें तो सबके सामने आती है, और बड़ों के सामने तो और बड़े रूप में आती हैं, छोटों के सामने छोटे छोटे रूप में आती है। लेकिन जब उन्होंने ये दृष्टिकोण बना लिया कि तो पेपर हाल में हम हैं, पेपर लेने वाले सभी हैं मेरे सामने, कोई ना कोई बात बोलेंगे, मुझे पास होकर के दिखाना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, तो ये दो शक्तियां जो है, एक धैर्यता की और एक सहन करने की, इन्हीं दोनों शक्तियों से वो पेपर को सहज पार कर लिया, फुल स्टॉप लगा लिया संकल्पों को, सहन तो करना पड़ेगा। कहते हैं जहां रहना है वहां सहना है, ऐसा नहीं सोचो यहां से अगर हम निकल जाएंगे तो सहज सहना नहीं पड़ेगा। कई बहनें एक सेंटर पर रहती है ना, कुछ डिस्टरबेंस हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, नीचे ऊपर कुछ सावधानी शिक्षाएं ज्यादा मिली, सोचती हैं ये बहन तो ऐसी ही है, बार बार ऐसे करती, इससे तो हम इस स्थान पर चले जाएंगे ना सुखी रहेंगे। फिर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, आसमान से गिरा खजूर में लटका, पहले से भी ज्यादा हिसाब किताब आ जाते हैं। मैं सुनता रहता हूं रोज समाचार, पहले से भी बेचारी, पहले से जो कहती जहां थी वहां तो बहुत अच्छी थी, ये तो बहुत गलती हो गई मेरे से, जोश में मैं कर लिया, हो गया पश्चाताप। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है, ज्ञानी आत्माएं कोई भी बोलने के करने के पहले एक सेकंड सोचती हैं, और अज्ञानी आत्माएं करके बोल करके फिर सोचती हैं, पश्चाताप करती हैं, समझ गए। करने और बोलने के पहले सोचना, सोच समझ करके बोलना और करना, और करके फिर सोचना, वो पश्चाताप का रूप है और वो बचाने का रूप है। अज्ञानी है वो ज्ञानी है। तो हम सब बाबा के ज्ञान स्वरूप बच्चे, नॉलेजफुल बच्चे, कोई भी कर्म करने के पहले कहते हैं बोलो भी तो तौल करके बोलो, सोचने के पहले भी सोच लो मेरे साथ क्या जाएगा, क्यों सोच रहा हूं मैं, क्या इससे मिलने वाला है। कभी मिलता है समय अपने आप से बातें करने का, इसे बैठ जाओ अपने से बातें करना सीखो, अपने को पढ़ाना सीखो, परिवर्तन करने का साधन है, अपने को पढ़ाओ, अपने से बातें करो। बाबा आपने मुझे अपना क्यों बनाया है, क्यों चुना है, इतनी सारी करोड़ों आत्माओं में से इतने लोगों को ही क्यों चुना है, क्या विशेषताएं थी, क्या बाबा ने मेरे में देखा जो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई, अपना बच्चा बना लिया। अपने भाग्य का चिंतन करो, इस ड्रामा की भावी का चिंतन करो, फिर प्रश्नों की अपने आप हलचल समाप्त हो जाती है। अगर प्रश्नों की हलचल में अगर हम उलझ गए ना, तो इस ब्राह्मण जीवन की कई प्रकार की प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। हम सबको इस समय विशेष अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने का समय है। ध्यान देना मेरी बात पर, साकार में बाबा का आना बंद हो गया। कुछ दिन पहले एक संदेश आया था, रुक्मणी बहन हमारी संदेशी ट्रांस में गई, बच्चे एक दरवाजा बंद हो गया, एक दरवाजा अभी बच्चों के लिए खुला है। कितने प्रश्न आ गए, संदेश इधर उधर वायरल हुआ, टाइप तो नहीं हुआ था, आजकल तो साइंस है, फटाफट देश विदेश में पहुंच गया, प्रश्न पर प्रश्न, क्या कौन सा गेट बंद हो गया, कौन सा गेट बंद हो गया। फिर मैंने पूछा, हमने कहा भाई आप संदेशी हो, आप बताओ कौन सा गेट बंद किया बाबा ने, तो कहने लगी मधुबन आने का गेट। हमने कहा वो तो अभी भी खुल गया है, फिर से खुल गया है, थोड़े दिन के लिए बंद था। फिर मैंने उनको कहा कि देखो बाबा के इशारे को कैच करो, बाबा कह रहा है बच्चे एक गेट बंद हुआ, बाबा का जो साकार अवतरण हो रहा था वो बंद हो गया, लेकिन एक गेट हमारे लिए है कि हम जब चाहें अभी भी अव्यक्त वतन में जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बुद्धि से अनुभव करके अव्यक्त मिलन मना सकते हैं। और कितने समय से बाबा ने मुरलियों में इशारा किया है बच्चे ये अव्यक्त मिलन कब तक, साकार के द्वारा अव्यक्त मिलन कब तक। आप बच्चों को अभ्यास करना है अव्यक्त वतन में, अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त मिलन का। आप पढ़ लो मुरलियां, ढेर सारी मुरलियां इस पर मिलेंगी। इतने समय से बाबा कहते आए हैं, तो ये जो गेट अभी खुला हुआ है अव्यक्त वतन में जाना, अव्यक्त बाबा के साथ मिलन मनाना, अव्यक्त रूप में सेवाएं करना, अव्यक्त वतन की महफिल का अनुभव करना। अब दिव्य दृष्टि तो हमको दिया नहीं बाबा ने, किसी को भी नहीं है, कोई कोई को होगा, लेकिन दिव्य बुद्धि का विमान तो सबके पास है। लेकिन बुद्धि अगर खुरापात वाली है, चंचल है, तेरे मेरे में अटकी लटकी है, तो क्या अनुभव करेगी वो। इसलिए लगाओ पुलिस स्टॉप। अगर अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करना है तो हमें अपने संकल्पों को ब्रेक देना होगा, सेकंड में ब्रेक लगाओ, सब अच्छा ही होने वाला है, कुछ गलत नहीं होने वाला है। ड्रामा बहुत कल्याणकारी एक्यूरेट बना हुआ है, और इसमें अगर कोई करेक्शन कर रहा है ऐसा क्यों ऐसा कैसे, माना वो डायरेक्टर को पहचानता नहीं है, उसने पहचाना ही नहीं बाबा को अभी तक, निश्चय का बल ही उसके पास नहीं, इसलिए हलचल में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसे करा, वो ऐसे करा, वो ऐसे करा। आज बाबा कैसे साक्षी होके मुस्कुराता, साकार में जब आया है अव्यक्त मिलन जिन्होंने मनाया है देखा है, एकदम शिक्षाएं भी दे रहा है, समझा भी रहा है, प्यार भी दे रहा है, लेकिन स्टेज एकदम न्यारी प्यारी साक्षी दृष्टा। दादियों ने भी ऐसी स्टेज बनाई फॉलो करके। हम सब बच्चों को भी उस स्टेज तक पहुंचना है कि किसी भी पार्टधारी के किसी भी पार्ट को देख करके मुझे हलचल में नहीं आना है। शुभ चिंतक हैं, कल्याण की भावना नहीं छोड़नी है, वो तो रखनी ही है, लेकिन हलचल में नहीं आओ। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। और सचमुच जो इस बात का बहुत पॉजिटिव रूप रखते हैं उनके लिए सब अच्छा ही दिखाई देती है और अच्छा हो जाता है। और जो सोचते हैं ऐसा हो रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो कभी भी इस संगम के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते, वंचित है उसे। संगम युग की प्राप्तियों से वंचित है। इतनी अखुट प्राप्तियां बाबा हम बच्चों को करा रहा है। कभी एकांत में बैठो, पूछो अपने आप से, ज्ञान सागर बाबा ने कितना स्पष्ट ज्ञान हर बात का दिया है। था शास्त्रों में, लोगों के पास है न अपना ज्ञान है, न बाबा का ज्ञान है, न घर का ज्ञान है, न कर्मों का ज्ञान है। बाबा ने हम बच्चों को एक एक को कितना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके आत्मा के ज्ञान की कितनी गुहेता स्पष्टता सुनाई है। नहीं तो कहते आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही परमात्मा है, सब आत्मा ही तो परमात्मा है, सब या आत्मा परमात्मा बन जाएगी। और बाबा ने आत्मा का इतना स्पष्ट ज्ञान दे दिया कि आत्मा इस कर्म इंद्रियों से जैसे कर्म करती है उसका कर्म का फल आत्मा भोगती है, संस्कार के रूप में उसके कर्मों का परिणाम होता है और संस्कार साथ ले जाती है, उन्हीं संस्कारों के अनुसार उसके कर्म होते और उस कर्मों की सजा होती है। जैसा कर्म करते हो वैसा उसको फल मिलता है, इसलिए वो निर्लिप नहीं है। आत्मा का स्पष्ट ज्ञान, बाबा कौन है, कहाँ है, लोग तो समझते थे वही ब्रह्म है, वही घर है, वही भगवान है, वो सब जगह व्यापक है। बाबा ने क्या ज्ञान दिया, वंडरफुल रीति से बच्चों को स्पष्ट बता दिया कि जिस घर से तुम आत्मा आई हो, ब्रह्म घर आपका असली घर है, मैं वहीं रहता हूं, वो रहने का स्थान है जिसको आप ब्रह्म कह रहे हो, वो ब्रह्म तत्व है, मूल वतन है, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है, वो समाने का नहीं है, लीन होने का नहीं है। आज इस ज्ञान को थोड़ा सा चिंतन में लाते हैं तो इतना नशा चढ़ता है, क्या बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है, समझ दी है। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा क्यों हलचल में आएगी। देखो इतनी सारी एक्टर्स के पार्ट को, जो भी उनके आगे घटनाएं आ रही हैं ऐसे थोड़ी आ रही हैं, बिना कर्मों के आएंगी क्या, कुछ किया है तब ऐसी भोगनाएं आ रही हैं। साक्षी होकर के देखो और सर्जन बन करके डॉक्टर बन करके उनका इलाज भले करो लेकिन उसके अधीन नहीं हो जाओ, दुखी नहीं हो जाओ। संकल्पों को अगर ब्रेक लगाना है, एक सेकंड में रोकना है तो नॉलेजफुल बनो, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहो, त्रिकालदर्शी स्टेज में रहो और सब बातों से उपराम होकर के रहो। उपराम, ऊपर की स्टेज। कहीं पर भी अगर आप फंस गए, अटक गए, किसी भी प्रश्न में उलझ गए तो बाबा का ये शब्द याद रखना, प्रश्नों में उलझने वाली आत्मा कभी भी प्रसन्नचित नहीं रह सकती। अगर मुझे सदा प्रसन्नचित रहना है तो प्रश्नों से पार चले जाओ, सब अच्छा है, सब अच्छे से अच्छा होगा, मेरे लिए भी सब अच्छा होगा। कई लोग निराशा के संकल्प बहुत जल्दी ले आते हैं, अपने कमजोर संस्कारों को देखते हैं, कमी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, मेरे अंदर ऐसा संस्कार है, मेरे को तो बहुत मेहनत है, मुझे बहुत युद्ध होती है, बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, और कमजोरियों का चिंतन करते करते क्या होता है, दिल से कष्ट हो जाते हैं, उमंग उत्साह का ब्लड जाम हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कमजोरियों का दर्शन मत करो। हैं कमजोरियां, हम जानते हैं इनको खत्म करना है, लेकिन सोचना नहीं है। सोचेंगे तो बड़ी हो जाएंगी, वर्णन कर देंगे किसी के आगे जो पहाड़ बन जाएगा। इसलिए सोचना और वर्णन करना इसकी बजाय आप उसके लिए तपस्या करो, एकांत में चले जाओ, बाबा के योग की पावरफुल किरणें लो और उन किरणों से उस कमी को समाप्त करो। विधियां तो बताइए बाबा ने, मैं क्या करूं, मेरे अंदर ये 10 लोगों को सुनाया और उन्होंने अपनी अपनी राय दिया और फिर राय लेकर के और डिस्टर्ब हो गए। सोचने की, इधर उधर वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, सब बातें बाबा ने मुरली में स्पष्ट बता दी हैं। मैं अपने बाबा के बच्चों को यही कहता हूं कि ज्यादा उलझो नहीं, बाबा ने जो सुनाया है वही सुनो, उसी पर मनन करो, चिंतन करो। फलाने भाई ने ये बता दिया, फलानी बहन ने ये क्लास करा दिया, उनमें ऐसी बातें बता दी, अब मैं क्या, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे आगे ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत सारे। अब ऑनलाइन तो लोगों ने क्या क्या क्लासेस कर दिया और सब यूट्यूब में ब्रह्मा कुमारी की क्लासेस भर गई। और सुनने वाले अगर सुनते रहते हैं तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कोई कमेंट्री दे रहा है, कोई कोई योग करा रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर पूछते रहते हैं ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, कहते जिसने कहा है उसी से पूछ लो, इधर उधर क्यों उलझ रहे हो। बाबा की मुरलियों को ध्यान से स्टडी कर लो। हमारे पास आज प्रिंटेड मुरलियां 48 साल की हैं, अव्यक्त बाबा की 69 से 2017 31 तारीख को लास्ट मुरली में बाबा ने समाप्ति वर्ष कह करके अपने पाठ को समाप्त किया है। समाप्त कहेंगे, परिवर्तन किया अव्यक्त अवतरण का, और वो सारी मुरलियां प्रिंटेड हैं, सब संदेश प्रिंटेड हैं। लेकिन किसी को इंटरेस्ट होना चाहिए, यही पढ़ना है, इसी की स्टडी करना है, इसी में सब कुछ है। मनुष्य आत्माएं तो अपना अपना चिंतन करती हैं, अपने तरह से सुनाती हैं, कुछ मिर्च मसाला लगा के सुनाती हैं, और सुनने वाले वाह भाई साहब ने बड़ा अच्छा क्लास करा, इसने बहुत अच्छी बात सुनाई। क्या अच्छी सुनाई, प्रश्नों में उलझा दिया। इसलिए कहीं पर भी उलझना नहीं, सुनो भले सबकी, लेकिन बाबा ने क्या कहा है श्रीमत केवल मुरली में है, उसके सिवाय अगर कहीं गए तो कभी कहते बाबा भटक जाएंगे फागी के अंदर, रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए सबके विचार सुन लिया और बाबा की श्रीमत सबके सिर माथे है, उसको सुनो, उस पर अध्ययन करो, उस पर मनन चिंतन करो, यही स्थिति बनाने का एक साधन है। इसलिए सब बाबा के बच्चों को अटेंशन देने की जरूरत है। संकल्प को एक सेकंड में ब्रेक लगा दो, हलचल समाप्त हो जाए, सब अच्छा है। इतनी नॉलेजफुल स्टेज चाहिए, नहीं तो हलचल प्रश्नों में उलझा देगी, और उलझ गए तो योग लगाने में बहुत मेहनत है, योग लगेगा ही नहीं। रू रिहान करते रहो, अपने भाग्य का चिंतन करते रहो, बार बार डायरी में लिखते रहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा बनेंगे नहीं, लेकिन हूं ही आत्मा। उस आत्मिक स्वरूप का अच्छा अभ्यास कर लो। 3 अभ्यास मैं आपको बताता हूं, अगर कर लिया इस संगम पर बहुत अच्छी खुशनुमा स्थिति बन जाती है। एक आदि से अंत तक का अभ्यास है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। इस भ्रकुटी की गुफा में बैठना, अपने उस चमकते हुए स्वरूप को देखना, मैं एक लाइट हूं, एक दिव्य सितारा हूं, मैं इस शरीर से न्यारा हूं, अपनी उस आंतरिक ऊर्जा का अनुभव करना, अपने संकल्पों को अपने स्वरूप में स्थित कर लेना, बहुत अच्छा अभ्यास है। बहते हुए सब संकल्पों को देखते 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 उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत फायदे होंगे, इसकी लिस्ट निकालोगे ना, बहुत लंबी लिस्ट है। कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, स्वभाव सरल हो जाएगा, वाणी मधुर हो जाएगी, व्यवहार में नम्रता आ जाएगी, स्थिति एकदम निश्चिंत बेफिक्र हो जाएगी। अभ्यास करके देखो, समय दो इसके लिए, अपने आप को पढ़ाओ, एकांत में चले जाओ। इसके लिए ही बाबा समय दिया, ये लॉकडाउन इसके लिए नहीं किया कि सब कार्य बंद कर दो, ये कार्य देने के लिए बाबा ने किया सबको। और आपको मधुबन की भट्टी मिली है, यहां पर भी सुनो, सब क्लासेज मिल रही, करो, लेकिन बीच बीच में एकांत में जाने का अभ्यास करो। एकांत माना एक के अंत में चले जाओ, ऐसे नहीं जाकर के यहां क्लास छोड़ के एकांत में कहीं चले जाना, यहीं बैठे बैठे एक के अंत में खो जाओ। तो ये अभ्यास अगर हमने कर लिया तो पहला अभ्यास आत्मा को कर्म इंद्रिय जीत बना देगा, सर्व आकर्षण से मुक्त कर देगा। और दूसरा अभ्यास इस जीवन का, ब्राह्मण जीवन का, अति इंद्रिय सुख, अंदर का सुख, तभी अनुभव होता है जब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, कुछ नहीं चाहिए आत्मा को, आत्मा एकदम तृप्त है, भरपूर है, संतुष्ट है, अविनाशी खजाने से भरपूर है। विनाशी चीजों के पीछे तो अगर कोई भागने लगेगा तो मृग तृष्णा ही है, एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, और जो आवश्यकताएं होंगी बाबा अपने आप पूरी कर देगा, क्यों उसके पीछे भागे हम, जो जरूरत होगी आ जाएगी। बच्चे हैं बाबा के, बाबा भूखा तो नहीं मारेगा, इसलिए ज्यादा इसके पीछे, साधनों के पीछे, कई प्रकार की चीजों के पीछे भागना, ये अपने समय को नष्ट करना है। इसलिए अति इंद्रिय सुख का मैं सदा अनुभव करता रहूं, उसमें समाया हुआ रहूं। और तीसरी स्टेज है डबल लाइट स्टेज, बेफिक्र वासा वाली स्थिति, कोई भी फिक्रात नहीं, कोई भी चिंता चिंतन नहीं, सब अच्छा है। अगर सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास कर लिया, संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास कर लिया, तो ये तीनों स्थितियों का अच्छा अनुभव होने लगेगा। तो आप सभी इसका अच्छा अनुभव करके यहां से जाना। कोई भी हलचल के संकल्प उठते हैं, ठीक है, सब अच्छा है, मैं क्यों सोचूं, मेरा क्या जाता, अपने को समझाना पड़ता है। दिखाई तो देता है, नीचे ऊपर कुछ होगा तो दिखेगा नहीं क्या, सब दिखता तो है, लेकिन दिखते हुए भी न देखना। ब्रह्मा बाबा यही करते रहे, अंत समय में जो कर्मातीत बने ना, देखते हुए भी नहीं देखा, सुनते हुए भी नहीं सुना। एक बार कोई हलचल हुई भंडारे में, कोई आपस में जोर जोर बोल रहे थे, दीदी मनमोहिनी जी आई बाबा के पास और उसी रूप से बोलने लगी, बाबा ये लोग ऐसे कर रहे हैं। बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराए, बोले बच्चे कर वो रहे हैं, चेहरा तुम्हारा चेंज हो रहा है, क्यों सोचती हो, जो करेगा वो पाएगा, ज्ञान तो सबके पास है, समझ तो बाबा ने सबको दे दी है, तुम अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ो। आप समझ सकते हो बाबा की क्या स्थिति होगी, जवाबदार थे, मालिक थे, यज्ञ रक्षक थे, यज्ञ पिता थे, कोई बच्चा नीचे ऊपर करेगा संकल्प नहीं चलेंगे, लेकिन अपनी कर्मातीत स्थिति बनानी है, संपन्न स्टेज को प्राप्त होना है। बाबा ने देखते हुए भी नहीं देखा, सुनते हुए भी नहीं सुना, सब अच्छा है। बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, सबको ठीक करने का ठेकेदार बाबा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इतना न्यारे प्यारे स्टेज में रह करके संपन्नता को प्राप्त कर लिया। इसलिए अगर फुल स्टॉप लगाना है तो सब कुछ कर दो बाबा के हवाले, बाबा अपने आप सब संभाल लेगा। और खुद जवाबदार बन गए तो स्टाफ लगेगा नहीं, कितनी भी मेहनत करो नहीं लगता। और जिस दिन सोच लिया है सब कुछ बाबा करण करावन हार है, उसकी प्रभु लीला है, सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, सब सुधार के सबको साथ लेके जाएगा, उस दिन अपने संकल्पों की हलचल रुक जाएगी, स्थिति एक रस बन जाएगी। तो सबको अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। अंत समय में क्या साथ जाएगा, क्या काम आता है? पैसा आएगा, संबंधी आएंगे, आज कोरोना काल में संबंधी आए, अंतिम संस्कार करने भी नहीं आने दिया लोगों ने, अंतिम दर्शन करने भी नहीं आने दिया, फूल भी नहीं चढ़ाने दिया, कोई काम नहीं आया, सबने देख लिया ये सीन, तो कोई काम नहीं आने वाले। जिनको हम अपना समझ रहे हैं वही सब धोखा देंगे, कोई साथ साथ नहीं देगा। इसलिए सब अपने अपने को मेरे मेरे को तेरे में बदल दो, सब बाबा तेरे हैं, सब तेरा है, सब तेरा है। और जिस दिन मेरे को तेरे में बदल दिया उस दिन संकल्प अपने आप स्टाप हो जाएंगे, फुल स्टाप लग जाएगा, और नहीं तो लगेगा नहीं। जब मेरा मेरा समझोगे संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा ये मुझे तो करना पड़ेगा, करो भाई, किसने मना किया है? बाबा तो सब ज्ञान देता है, सिखाता सब कुछ है, फिर न्यारा होकर के साक्षी होकर देखता है। तो सब कुछ बाबा ने सिखा दिया है, सब कुछ सुना दिया है, अभी हमारा काम है बाबा की इतनी ऊंची पालना का रिटर्न करना। और रिटर्न यही है, जैसा बाबा चाहता है वैसा हम बन करके दिखाएं, ठीक है? जैसा बाबा चाहता वैसे बन के दिखाना है। तो चलो अभी लगाना स्टाफ, देखो किसका लगता है, ज्ञान का आयल तो पड़ गया है, अभी स्टाफ लगा के देखना आधा घंटा। हम सब अपने संकल्पों को ऐसा फुल स्टाफ लगाएं जो अपने स्वरूप को और बाबा के स्वरूप को दोनों को देखें और दूसरी बातें सब भूल जाएं। देखो जरूर संकल्प तो चलेंगे, लेकिन यही संकल्प, मैं एक लाइट हूं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, मैं शुभ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं और बाबा मेरे सन्मुख है, ज्ञान सूर्य के रूप में उसकी लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं, ऐसा चिंतन करते करते इसमें समाने का अनुभव करो। यही लवलीन स्थिति आत्मा और परमात्मा के समाने वाली स्थिति है। आत्मा परमात्मा में नहीं समाएगी, लेकिन उसके प्यार में, उनकी शक्तियों में समा जाएगी और हलचल के संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो चलो हम सभी ऐसा अभ्यास करते हैं। ओम शांति। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर चारों ओर लाइट की किरणें फैलाओ। अनेक दुखी आत्माओं को शांति और शक्ति की सकास दो। ज्ञान सूर्य बाबा की सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्वात्माओं को शांति का महादान दे रही हूं, शक्ति का वरदान दे रही हूं। मनसा सेवा करो।